بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دیکھو، بات چل رہی ہے مجاہدہ کی حقیقت. کل بتایا تھا، وہی مجلس نمبر 23 ہے. مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا، مجاہدہ نفس کی مخالفت کرنے کا نام مجاہدہ ہے. نفس اگر گناہ کے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے تو اس کی مخالفت واجب ہے، اور نفس اگر جائز کاموں کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کی مخالفت مستحب ہے. لیکن مخالفت کریں گے تو مجاہدہ ہوگا. جائز کاموں میں اس لیے مخالفت کرنی ہے کہ جائز کام کرتے کرتے انسان حرام میں گھس جاتا ہے. ضرورت نہیں، یہ سب خواہشات ہیں، ضرورت سے زائد، ورنہ ضرورت کا کام تو کرنا ہے. اس پر بات چل رہی تھی، پھر فرمایا آخر میں نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے. کہ بچے کو دودھ چھڑانا پڑتا ہے چاہے وہ روئے کچھ بھی کرے، اسی طریقے سے نفس کو گناہ چھڑانا پڑتا ہے چاہے نفس کتنا ہی ذلیل ہو، چاہے کتنا ہی بے چینی ہو، لیکن اس کو کرنا ہی پڑے گا. آج بات ہے سکون اللہ کے ذکر میں ہے. یاد رکھو، اللہ تعالی کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہے. جی، آواز برابر ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قرار اور سکون نہیں ہے. ساری دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر لیے، سمجھے، لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں، چین نہیں ملتا. انسان سکون کو حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو جمع کرتا ہے. بھائی، مکان کو اچھی ڈیزائن کا بناتا ہے کیوں؟ پوچھو، سکون ملے. اس میں ڈیکوریشن کرتا ہے کیوں؟ کہ سکون ملے. اس میں اچھے کٹن اور اچھے صوفے لگاتا ہے کیوں؟ کہ سکون ملے. اچھے برتن لیتا ہے کیوں؟ کہ سکون ملے. اچھے بیڈ لیتا ہے کیوں؟ تو یہ سارے اسباب سکون کے لیے جمع کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں ہے، چین نہیں ملتا. تو ویسٹرن لائف، مغربی معاشرے میں پیسے کی ریل پیل، تعلیم کا معیار بلند. آج ویسٹرن لائف میں کیا ہے؟ پیسہ بہت، اور تعلیم کا اسٹینڈرڈ بھی بہت اونچا، اور لذت حاصل کرنے کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ جس طرح چاہو لذت حاصل کرو، ہے نا؟ سب کچھ ہے. دیکھو، پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے، اور اس طریقے سے لذت حاصل کرنے کی ہر چیز کھلی ہوئی ہے، کوئی قانونی پابندی نہیں کہ جس طرح چاہو لذت ہے. لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے کہ وہ پریشان ہیں، بے چین ہیں، نیند آتی نہیں. نیند کے لیے نیند آنے والی گولیاں کھا کھا کر اس کی مدد سے سو رہے ہیں. کیوں؟ دیکھو، اسباب جمع کر لیے، پیسے خوب ہے، ایجوکیشن خوب ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود بھی سکون کیوں نہیں؟ کیوں؟ دل میں سکون اور قرار نہیں. سکون کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو. گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ گناہوں میں سکون ہے ہی نہیں. سکون کے اسباب تو ہے لیکن سکون نہیں ہے. پیسے سکون کے اسباب ہے، ایجوکیشن سکون کے اسباب ہے، اور ہر طرح کا کھانا پینا جو کچھ بھی کرنا ہے قانوناً اجازت ہے، سکون کے اسباب ہے لیکن سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ کہ اس میں گناہ ہے. سکون کیوں نہیں ملے؟ اس لیے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے پھرو. یاد رکھو، ان گناہوں اور نافرمانیوں اور مصیبتوں میں سکون نہیں. सुकून तो सिर्फ एक चीज में है और वो है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद में इत्मीनान और सुकून है। अल्लाह की याद में इत्मीनान और सुकून है। अभी आवाज ठीक है या पहले ठीक था ये बताना। तो इत्मीनान, अल्लाह की याद में इत्मीनान और सुकून है। अल्लाह की याद से मुराद क्या? यानी दीन के अंदर, याद रखो पूरा का पूरा दीन, हाँ पूरा का पूरा दीन ये जिक्रुल्लाह है, उसमें सुकून है। यहां जिक्र से मुराद सिर्फ वो सुभान अल्लाह तस्बीहात पूर्ण करना नहीं है। हम इस हदीस से, इस आयत से ये मुराद लेते हैं कि भाई चलो सुबह शाम की तस्बीहात करेंगे तो ये जिक्र हो गया, उससे सुकून मिलेगा। जी तो फरमाया नहीं, यहां जिक्र से मुराद वो भी है और पूरा का पूरा दीन भी है। पूरे पूरे दीन के अंदर चैन और सुकून है, याद रखे। इस वास्ते ये समझना धोखा है कि नाफरमानियां करते जाएंगे और सुकून मिलता जाएगा। देखो बाद मर्तबा हम सुबह शाम की तस्बीहात और जिक्र करते जा रहे हैं लेकिन नाफरमानियां भी कर रहे हैं, तो सुकून क्यों नहीं मिल रहा? अगर जिक्र में, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में सुकून होता तो ये जिक्र तो हो रहा है। नहीं, असल में पूरे दीन में, पूरा दीन ये अल्लाह का जिक्र है जिसमें गुनाहों का बचना भी है। जी तो पूरे दीन में सुकून है, तो नाफरमानी में सुकून नहीं मिलता। याद रखो जिंदगी भर नहीं मिलेगा, जिंदगी भर नहीं मिलेगा। इस दुनिया से तड़प तड़प कर जाओगे, अगर नाफरमानियों को न छोड़ा तो सुकून की मंजिल हासिल न होगी। नाफरमानियों को न छोड़ा, गुनाहों को न छोड़ा तो क्या होगा? सुकून नहीं मिल सकता। आज सारी दुनिया सुकून की तलाश में है, तंग आ चुकी है। हर एक देखो तो सुकून चाहता है, टेंशन फ्री जिंदगी चाहता है, लेकिन टेंशन फ्री बिज़िक्रिल्लाह में है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के दीन में है। बाकी इसको छोड़ोगे तो सारा का सारा टेंशन होगा। क्यों? कि टेंशन डालने वाला भी अल्लाह और टेंशन निकालने वाला भी अल्लाह। अल्लाह डाल देगा, अच्छी खासी सेटिंग होगी जिंदगी की, अल्लाह अचानक टेंशन डाल देगा। अब परेशान, सुकून अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को देते हैं, सुकून अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके दिल में उसकी मोहब्बत हो। जी जिनके दिल में उसकी याद हो, जिनके दिल में उनके जिक्र से आबाद हो, उनके सुकून और इत्मीनान को देखो कि जाहिरी तौर पर तो परेशान हाल भी है और फक्र फाके भी गुजर रहे हैं, लेकिन दिल को सुकून और करार की नेमत मयसर है। इसीलिए जो इंसान अपनी इस्लाह के लिए किसी से जुड़ जाता है, उसको खुद को महसूस होगा कि अब मुझे सुकून मिलने लगा। उसकी पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होगा, उसको सुकून मिलेगा। हालांकि अब आमाल में कमी है, पहले आमाल ज्यादा कर रहा था, लेकिन फिर भी सुकून अब ज्यादा है। आमाल कम होने के बावजूद सुकून ज्यादा है, पहले आमाल ज्यादा करने के बावजूद सुकून कम था। तो ये क्यों? इसलिए कि उसने एक हुक्म को पूरा किया है कि इताअत वाली जिंदगी गुजार रहा है, दूसरों के मशवरे से जिंदगी गुजार रहा है, तो उसके दिल में सुकून आ जाता है। हाँ, दूसरों के मशवरे से, जी हर चीज में उसमें सुकून आता है, बहुत सुकून मिलता है। अगर इसका सुकून का पता चल जाए तो हर इंसान दूसरों से पूछ पूछ कर चले। आज अरे एक सुकून हासिल करने के लिए बोले मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, अपनी पसंद से चलूंगा, मैं दूसरों को क्यों पूछू, आज तो पूछना शर्म है। हालांकि पूछना ऐने ईमान है, सहाबे किराम हर काम अल्लाह के नबी से पूछ पूछ कर चलते। क्या बाजे सहाबा बहुत जबरदस्त अकलमंद थे, साहिबुर राय थे, लेकिन उसके बावजूद पूछ पूछ कर चलते, उसमें सुकून था। आज देखो आप जिंदगी देखो, देखो एक बीवी है अपने शौहर से पूछ पूछ कर चलती है, उसको कोई टेंशन नहीं होता, सुकून वाली जिंदगी होती। क्यों? कि वो इताअत में जिंदगी गुजार रही है तो उसको सुकून मिल जाता। और अगर अपनी मर्जी से करेगी, थोड़ा पूछा थोड़ा छोड़ा, तो उसको देखना उसके बावजूद उसके दिल के अंदर एक बेचैन हो, बेचैनी होगी। ऐसे ही हर एक अपने बड़ों से पूछकर चलेगा, औलाद जो माँ बाप से पूछकर चलती है तो उस औलाद को सुकून होगा, उसको कोई टेंशन नहीं, कहीं धोखा भी नहीं खा सकती। लेकिन जो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे और उनको टेंशन आएगा। तो सुकून अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके दिल में उसकी मोहब्बत हो, जिनके दिल में उसकी याद हो, जिनका दिल उनके जिक्र से आबाद हो। उनके सुकून और इत्मीनान को ये देखो कि जाहिरी तौर पर परेशान हाल भी है, फकरो फाका भी गुजर रहे, लेकिन दिल को सुकून और करार की नेमत मैसर। लिहाजा अगर दुनिया का भी सुकून हासिल करना चाहते हो, दुनिया का भी सुकून हासिल करना चाहते हो, तो इन नाफरमानियों और गुनाहों को तो छोड़ना पड़ेगा, और गुनाहों को छोड़ने के लिए जरा सा मुजाहदा करना पड़ेगा, नफ्स के मुकाबले में जरा सा डटना पड़ेगा, डटना हो। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता। और साथ ही अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया, वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में ये मुजाहदा और मेहनत करते हैं कि माहौल का, माशरे का, नफ्स का, शैतान का, ख्वाहिशात का तकाजा छोड़कर वो हमारे हुक्मों पर चलना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना। हजरत थानवी रहमतुल्लाह इसका तर्जुमा फरमाते हैं कि हम उनके हाथ पकड़कर ले चलेंगे। क्या फरमाया, सुबुलना, हिदायत क्या है, हम उनका हाथ पकड़कर ले चलेंगे। अब जाहिर बात है, एक तो रास्ता बता देना और एक आदमी उनका हाथ पकड़कर चले, तो दोनों में फर्क क्या है, जो चलेगा उसमें भटकने का कोई खतरा नहीं, और जिसने बता दिया है तो हो सकता है वो भटक भी सके। तो फरमाया हम उसको हिदायत देंगे, हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, ये नहीं कि दूर से दिखा दिया, उसको कहते हैं दिखा देना कि ये रास्ता है, बल्कि फरमाया कि हम उसका हाथ पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन जरा कोई कदम तो बढ़ा ले, बढ़ाए, जरा कोई इरादा तो करे, जरा कोई अपने नफ्स के मुकाबले में एक मर्तबा डटे तो सही, फिर अल्लाह ताला की मदद आती है। ये अल्लाह ताला का वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। तो ये है कि नफ्स के मुकाबले में डटना पड़ेगा, तो क्या होगा, अल्लाह ताला हाथ पकड़ कर ले चलेंगे। लिहाजा मुजाहदा उसी का नाम है कि एक मर्तबा आदमी डट कर इरादा कर ले कि ये काम नहीं करूंगा, दिल पर आरे चल जाएंगे, ख्वाहिशात पामाल हो जाएगी, दिलो दिमाग पर कयामत गुजर जाएगी, लेकिन ये गुनाह का काम नहीं करूंगा। जिस दिन नफ्स के सामने डट गया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन से हमारा महबूब हो गया, उस दिन से अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारा महबूब हो गया। देखो अल्लाह की मोहब्बत लेना है कितना आसान, बहुत आसान रास्ता है, बहुत शॉर्टकट रास्ता है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारा महबूब हो गया, अब हम खुद उसका हाथ पकड़कर अपने रास्ते पर ले जाएंगे। ये विलायत मिल गई, गुनाहों से बचने पर विलायत मिलती है। और वली किसको कहते हैं, वली का माना दोस्त, और हाथ कौन पकड़ता है, दोस्त दोस्त का हाथ पकड़ता है, अभी अल्लाह का दोस्त बन गया तो अल्लाह भी उसका हाथ पकड़ कर ले चलेंगे, वली हो गया।
गुनाहों से बचने पर विलायत मिल गई। इसलिए इस्लाह के रास्ते में सबसे पहला कदम मुजाहदा, सबसे पहला कदम मुजाहदा है कि ये न करो और इस्लाह हो जाए तो ये कैसे हो सकता है। वरना तो वही होगा कि वेस्टर्न लाइफ में क्या है, हर चीज की रेल पेल है, माल है, एजुकेशन है, आजादी है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है। सुकून नहीं, सुकून तो मुजाहदे में है, याद रखना, सुकून पाबंदियों में है। सुकून आज हम सुकून आजादी में ढूंढ रहे हैं, आजादी में सुकून है ही नहीं। आजादी तो मरने के बाद है, दुनिया की जिंदगी में पाबंदी है, दुनिया की जिंदगी में ताबेदारी है, दुनिया की जिंदगी में मुजाहदा है, और इसी के अंदर सुकून है। आज हम थोड़ा सा और आगे निकल गए, जिसको कहते हैं ना कि हमें तो अभी क्या, ये हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए, वो आगे क्या गए, सुकून खो बैठे, क्योंकि आजाद हो गए। और कहते हम आजादी से जिंदगी गुजारेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, सुकून खो बैठे हैं। आज भी जो पाबंद होकर चलेगा, अब किसका पाबंद, अगर दुनिया के अंदर भी कोई पाबंद होता है तो उसको भी सुकून मिलता है, लेकिन अल्लाह के दिन का पाबंद होगा तो फिर उसको सबसे हकीकी सुकून मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का पाबंद होना है, इस्लाह तो उसी का नाम है। तो उसमें सबसे पहला कदम क्या है, मुजाहदा, और उसका अजम करना होगा। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ये शेर पढ़ा करते थे, आरजुए खुन हो या हसरते पामाल हो, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे। इरादे करो कि हमें भी इस दिल को बनाना है किसके, अल्लाह के काबिल, कि अल्लाह पसंद कर ले। इस दिल को ऐसा बनाओ जो आरजुए दिल में पैदा हो रही है वो चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे उनका खून हो जाए, अब मैंने तो इरादा कर लिया है कि अब तो उसको बनाना है तेरे काबिल मुझे। अब इस दिल में अल्लाह जल्ल जलालहू की अनवार का नुजूल होगा, फिर क्या होगा, फिर अल्लाह ताला इस दिल के ऊपर अपनी तजल्लियात, जो तजल्लियात का लफ्ज यानी इसी का माना है नूर, अनवार का नुजूल होगा, नूर होंगे कई किस्म के, कई किस्म की तजल्लियात होती है ना। अब इस दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत जागुजी होगी, अल्लाह की मोहब्बत आएगी, जब नूर आएगा तो मोहब्बत आएगी, अब ये गुनाह नहीं होंगे। फिर देखो कि अल्लाह ताला की तरफ से कैसी रहमत नाजिल होती है, और आदमी इस राह पर चल पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, तबलीग करते करते इस्लाह करनी है, इस्लाह करते करते भी तबलीग करनी है। ये नहीं है कि तबलीग करते करते इस्लाह की जरूरत ही नहीं है, इस्लाह हो जाएगी, नहीं। ये देख लो, मुजाहदा तो खुद करने जाओगे तो भटक जाओगे, इसीलिए तबलीग में इस्लाह क्या है, हर चीज पूछ पूछ कर करनी होती है। कि पहले तो अगर जाना है तो बोले मशवरे से जाओ तो पूछना पड़ा, अब जो रुख मिला है जहां कहीं बात तबीयत के खिलाफ मिला तो देखो मुजाहदा हो, इसलिए इस्लाह हो रही। दूसरी बात, अब वहां जाने के बाद भी खाने का वक्त चाह रहा है कि अभी भूख लगी है, फरमाया नहीं, इताअत के साथ चलो, मशवरा हुआ कि इतने बजे खाना, अब मुजाहदा। सोने का वक्त, मैं ज्यादा सोता हूं, अब कम सोना है, मुजाहदा। हर चीज में मुजाहदा हो रहा है, और वो पूछ पूछ कर चलना है, फरमाया बाहर जाना है तो अमीर से पूछ कर जाओ, देखो उसमें सारा पूछना है, तो अमीर से पूछ कर जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। तो ये देखो, तो इसलिए अगर वही तबलीग हो और अपनी मर्जी से किसी मस्जिद में चले गए और वहां जाकर अपनी मर्जी से बाहर चले गए, तो अब वो तबलीग क्या रही, वो तो टूर हो गया, टूर में आजादी है, वो तो घूमना फिरना हो गया। और अगर घूमने फिरने भी गए हैं लेकिन उसमें भी किसी को अमीर बनाया और मशवरे से काम हो रहे हैं तो भी वो तबलीग होगी। देखो, दीन को दुनिया बनाओ, दुनिया को दीन बनाओ, तो इसीलिए वो हमारे हाथ में है कि जैसी नीयत तो वो दुनिया भी दीन बन जाएगी, और अगर नीयत बिगड़ गई तो दीन भी दुनिया बन गई। तो याद रखे, इस काम को छोड़ते हैं उसमें बड़ी तकलीफ होती है। तो देखो, याद रखो, शुरू शुरू में तो ये काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। शुरू शुरू में काम के करने में बड़ी दिक्कत होती है कि दिल तो कुछ चाह रहा है और अल्लाह की खातिर इस काम को छोड़ते हैं, इसमें बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाद में इस तकलीफ में ही मजा आने लगता है। फिर मुजाहदे में भाई, शुरू में तो तकलीफ होती है, बाद में उस मुजाहदे में मजा आता है। कैसा? हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को कलमा पढ़ने पर क्या हुआ? पिटाई हो रही है, उनसे पूछो कि इस पिटाई में मजा आ रहा है कि नहीं, तो उनको मजा आ रहा था, तकलीफ नहीं हो रही थी। वो जाहिरन तकलीफ थी, अंदर में सुकून था। क्यों? कि अल्लाह ताला उनके दिल में एक सुकून डाल देते हैं, जो सुकून मिलने के बाद सारी तकलीफें तकलीफ नहीं रहती, वो राहत हो जाती। और अगर दिल में से उस सुकून को निकाल दिया जाए तो सारी राहत राहत नहीं होती, वो तकलीफ बन जाती है। समझे मेरे भाई को? सुन रहे हो? कि सो गए सब। तो देखो, तो ये है कि अल्लाह ताला उसमें सुकून डाल दे तकलीफ के अंदर, तो तकलीफ सुकून का जरिया बन गई। और अल्लाह अगर बेचैनी डाल दे राहत के अंदर, तो राहत बेचैनी का जरिया बन गई। इसलिए चीजों में न राहत है, चीजों में न तकलीफ है, तकलीफ और राहत तो देने वाली अल्लाह की जात है, कि जो अल्लाह के लिए मुजाहदा करेगा अल्लाह उस मुजाहदे में सुकून डाल दे। इसलिए वो सहाबे किराम जिनकी पिटाई हो रही थी कलमा पढ़ने पर, लेकिन उनको सुकून था, ईमान नहीं छोड़ रहे थे। क्यों नहीं छोड़ रहे थे? वो इसलिए कि उसमें सुकून है, और को सुकून को छोड़ता नहीं। हम आमाल को इसलिए छोड़ देते हैं कि हमें तकलीफ लग रही है, और तकलीफ पर इंसान छोड़ देता है। इसलिए इस बात को जरा ध्यान से समझो, गौर करो कि हमारी जिंदगी के अंदर ही कई मर्तबा ऐसा होता है, और शुरू में मुजाहदा होता है, शुरू में बड़ी तकलीफ होती है, बाद में मजा आता है। इसलिए फरमाया कि किसी कोई अपनी इस्लाह करा रहा है, अब उसकी इस्लाह हुई या नहीं हुई, उसकी अलामतें बहुत सारी है। उन अलामतों में से एक ये है कि उसको अब जितना सताया जाएगा उतना ही उसको मजा आएगा। ये है, जितना सताओ उतना मजा। अब वो उधर से निकल गए कि पहले सताओ तो गुस्सा आता था, अब सताओ तो मजा आता है, तकलीफ में मजा, तो और लुत्फ आने लगता है, मजा भी आता है, लुत्फ आने। जब ये ख्याल आता है कि मैं नफ्स को जो कुचल रहा हूं और आरजो का जो खून कर रहा हूं, ये अपने मालिक और खालिक की खातिर कर रहा हूं, उसमें जो मजा और कैफ है आप अभी उसका तस्वुर नहीं कर सकते। ये वो टेस्ट है जो अभी आपने चखा नहीं है। आपने राहत का टेस्ट तो चखा है, तकलीफ के अंदर राहत का टेस्ट नहीं चखा। जब तकलीफ के अंदर राहत का टेस्ट मिलेगा, ओहो, फिर तो वो अजीब टेस्ट होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम या पता नहीं कोई साहबी थे जो बीमार थे, जब वो तंदुरुस्त हुए, पूछा तुम्हारा वो मजा था कि इसमें? बोले उस तकलीफ में जो मजा था वो इस राहत में मजा नहीं। जी देखो, मां तकलीफ क्यों बर्दाश्त करती है? मां को देखिए उसकी क्या हालत होती है, कि सख्त सर्दी का आलम है, कड़कड़ाते जाड़े की ठंडी की रात है, और रजाई और ब्लैंकेट में लेटी हुई है, और बच्चा पास पड़ा है। इस हालत में उस बच्चे ने पेशाब कर दिया। अब नफ्स का तकाजा तो यह है कि ये गरम गरम बिस्तर छोड़कर कहां जाऊं? ये तो ठंडी का मौसम है, गरम गरम बिस्तर छोड़कर जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मां ये सोचती है कि अगर मैं न गई तो बच्चा गीला पड़ा रहेगा, उसके कपड़े गीले रहेंगे, इस तरह गीला पड़ा रहेगा तो कहीं उसको बुखार न हो जाए, उसकी तबीयत खराब न हो जाए। वो बिचारी अपने नफ्स का तकाजा छोड़कर सख्त ठंडी के दिनों में बाहर जाकर ठंडे पानी से उसके कपड़े धो रही है, उसके कपड़े बदल रही है। ये कोई मामूली मशक्कत है? मामूली तकलीफ है, लेकिन माँ ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। क्यों? इसलिए कि अपने बच्चे की कामयाबी, उसकी सेहत माँ के सामने है। इसलिए वो इस सख्त ठंडी में अपने नफ्स के तकाजे को पामाल करके सारे काम कर रही है। बच्चे की राहत सामने है, इसलिए काम कर रही है। तो हमें भी, एक औरत का कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। वो कहती है भाई, वो क्या कहती है कि भाई किसी तरह मेरा इलाज कराओ ताकि बच्चा हो जाए और औलाद हो जाए। दुआएं कराती और उसके लिए दुआएं कराती फिर रही है कि दुआ करो अल्लाह मियाँ से मुझे औलाद दे दे, और उसके लिए तावीज गंडे और खुदा जाने क्या क्या कराती फिर रही है। एक दूसरी औरत उससे कहती है कि अरे तू किस चक्कर में पड़ी है। दूसरी ने आकर कहा, अरे तू किस चक्कर में पड़ी है, बच्चा पैदा होगा तो तुझे बहुत सी मशक्कतें उठानी पड़ेगी, ठंडी की रातों में उठकर ठंडे पानी से कपड़े धोने होंगे। तो औरत जवाब देती है कि मेरे एक बच्चे पर 1,000 ठंडी की रातें कुर्बान है, इसलिए कि उस बच्चे की कदरों कीमत उसके दौलत होने का एहसास उसके दिल में है। इस वास्ते उस माँ के लिए सारी तकलीफें राहत बन गई। वो माँ जो अल्लाह से मांग रही है कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, उसके माना यह है कि औलाद की जितनी जिम्मेदारियां है, जितनी तकलीफें हैं वो दे दे, यू मांग रही है ना गोया तो। लेकिन वो तकलीफ उसकी नजर में तकलीफें ही नहीं, बल्कि वो राहत है। अब जो माँ जाड़े की रात में, ठंडी की रात में उठकर कपड़े धो रही है, उसको तबीयी तौर पर तकलीफ तो जरूर हो रही है, लेकिन अकली तौर पर उसे इत्मीनान। एक तो तबीयत है और एक अकल। तो अकल के एतबार से तो इत्मीनान है, तबीयत के एतबार से थोड़ा उठना मुश्किल है कि मैं ये काम अपने बच्चे की भलाई की खातिर कर रही हूं। जब इत्मीनान होता है तो उस वक्त उससे अपनी आरजू के कुचलने में भी लुत्फ आने लगता। इसलिए गुनाहों से बचने में तबीयी तौर पर तो तकलीफ होती है, अकली तौर पर सुकून होता है। उसी बात को मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह फरमाते हैं, अज मोहब्बत तलखा शीरी शवद, कि जब मोहब्बत पैदा हो जाती है ना तो कड़वी से कड़वी चीजें भी मीठी मालूम होने लगती। माँ को बच्चे से मोहब्बत होती है तो बच्चे के लिए तकलीफ उठाना यानी मीठी मालूम होती, मुसीबत मालूम नहीं होती है। जब बंदे को अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह के लिए तकलीफ उठाना मुसीबत नहीं होगी, मजा होगा, राहत होगा। जिन कामों में तकलीफ हो रही थी मोहब्बत की खातिर, उनमें भी मजा आने लगता है, लुत्फ आने लगता है कि मैं काम मोहब्बत की वजह से कर रहा हूं, मोहब्बत की खातिर कर रहा हूं। जी देखो, मौला की मोहब्बत लैला से कम ना हो, अल्लाह की मोहब्बत। देखो सुनने वाले भी होंगे, मोहब्बत की बात पर जरा मोहब्बत से भी तो कुछ लिखो ना कि हाँ हम सुन रहे हैं। एक दो जन है जो बराबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे होते हैं, उससे बहुत फायदा भी होगा कि पता भी चले और नींद भी उड़ जाएगी। बाज मरतबा तो सकीना नाजिल हो जाता है, इतना ध्यान से सुनते हैं कि सुनते सुनते सुन हो गए। इसलिए जरा और कभी आपके सोने का असर फिर मुझ पर भी पड़ता है कि मैं भी सुनाते सुनाते सुन जाता हूं, सो जाता हूं। जी अब सुनो, मौला की मोहब्बत। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में मोहब्बत की बड़ी अजीब हिकायतें लिखी, बातें लिखी। मसनवी में मोहब्बत की बड़ी अजीब बातें लिखी। मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज है, मोहब्बत का जब लफ्ज आता है तो बड़ा मजा आता है। अल्लाह की मोहब्बत फरमाया, बड़ी अजीब। लैला मजनून का किस्सा लिखा है, क्योंकि मोहब्बत की मिसाल को समझाने के लिए लैला मजनून का किस्सा लिखते हैं। जी कि मजनून लैला की खातिर किस तरह दीवाना बना। मजनून जो था ना, ये लैला की खातिर किस तरह दीवाना बना, और ये कोई घड़ा हुआ किस्सा नहीं, ये हकीकत में कि किस तरह दीवाना बना और क्या क्या मशक्कतें उठाई मजनून ने लैला के लिए। फरमाया, दूध की नहर निकालने के इरादे से चल खड़ा हुआ और काम शुरू भी कर दिया, दूध की नहर। अब बताओ कितनी ये सारी मशक्कत उठा रहा है। कोई उससे कहे कि तू ये जो काम कर रहा है ये बड़ी मशक्कत का काम है, उसे छोड़ दे, तो कहता है हजार मशक्कतें कुर्बान जिसकी खातिर ये काम कर रहा है। फरमाया, ये मशक्कत है ही नहीं अगर वो मुझे मिल जाए, उसकी मोहब्बत में कर रहा हूं, मुझे तो उसी नहर खोदने में मजा आ रहा है, इसलिए कि मैं अपनी महबूब की खातिर कर रहा हूं। हाय हाय, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इश्क मौला के कम अज लैला बुवद, इश्क मौला के कम अज लैला बुवद, गोए गश्तन बहरे औला बुवद। मौला का इश्क हकीकी कब लैला के इश्क से कम हो सकता है? मौला ये हकीकी कब लैला के इश्क से कम हो सकता है? मौला के लिए गेंद बन जाना ज्यादा औला है। कश्तन बहरे औला बुवत, गेंद बॉल बन जाओ। लिहाजा जब आदमी मोहब्बत की खातिर ये तकलीफ उठाता है तो फिर बड़ा लुत्फ आने लगता है। एक आदमी मुलाजिमत करता है, बताओ मुलाजिमत करता है जिसके लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता है, लेकिन अच्छी खासी सर्दी में बिस्तर पर लेटा हुआ है, जाने का वक्त आ गया तो बिस्तर छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसका टाइम हो गया। अब नफ्स का तकाजा तो ये था कि गरम गरम बिस्तर में पड़ा रहता, लेकिन घर छोड़कर बीवी बच्चों को छोड़कर जा रहा है और सारा दिन मेहनत की चक्की पिसने के बाद, मेहनत और मुजाहदा करने के बाद रात को किसी वक्त घर वापस आता है। और बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो सुबह अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और रात को वापस आकर सोता हुआ पाते हैं, ऐसे मुजाहदा करते। गरज वो शख्स सब तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। अब अगर कोई शख्स उससे कहे कि अरे भाई तुम मुलाजमत में बहुत तकलीफ उठा रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मुलाजमत छुड़ा देता हूं, चलो मैं तुम्हारा काम छोड़ा देता हूं, तुम्हें छुट्टी दे दे, चलो भाई तुम घर पे सो जाओ तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। अब अगर खाली इतना जुमला सुनेगा कि मैं तुम्हारी मुलाजिमत छोड़ा देता हूं, तो जवाब देगा कि नहीं भाई नहीं, बड़ी मुश्किल से तो ये मुलाजिमत मिली है और उसको मत छुड़वाना, उसको सुबह सवेरे उठकर जाने में ही मजा आ रहा है, तकलीफ नहीं आ रही है। क्या बोल रहा है? अरे सुबह सवेरे जाने में ही मजा आ रहा है और औलाद को बीवी को छोड़कर जाने में भी मजा आ रहा है। क्यों? इसलिए कि उसको इस तनख्वाह से मोहब्बत है जो महीने के आखिर में मिलने वाली है। बिजनेस वाले को देखो, वो बीमारी की हालत में भी उठ भागता है, क्यों? मशक्कत हो रही है, लेकिन जो पैसा मिलने वाला है ना उसमें बड़ा मजा आता है। तो पैसे से मोहब्बत है ना, तो इस मोहब्बत के खातिर वो सारी तकलीफें उठाता है। इस मोहब्बत के नतीजे में सारी तकलीफें मीठी बन गई। तो क्या हमें अल्लाह ताला से पैसों के बराबर भी मोहब्बत नहीं है? अगर होती तो हम भी गुनाहों के छोड़ने की तकलीफ को उठा लेते, आमाल के करने की तकलीफ को उठा लेते, हुक्म को पूरा कर लेते। तकलीफ बन जाए। अब अगर किसी वक्त मुलाजिमत छूट गई तो रोता फिर रहा है कि हाय वो दिन कहाँ गए जब सुबह सवेरे उठकर जाया करता था और लोगों से सिफारिशें कराता फिर रहा कि मुझे मुलाजिमत पर दोबारा बहाल कर दिया जाए, हालांकि उसको तो राहत मिली, राहत मिली, पूरा दिन सोने को मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, आराम से घर पे बैठे है, तो राहत है लेकिन इस राहत में तकलीफ है। अब अगर किसी की मुलाजिमत छूट गई तो बताओ राहत की शक्ल है कि नहीं? मजा है, घर में बैठा है, कुछ टेंशन नहीं। फरमाया, इस राहत की शक्ल में तकलीफ है और वो मुलाजिमत पर जो जा रहा है उस मुलाजिमत में, वो निकलने में, वो सब के सब तकलीफ है, इस तकलीफ में राहत है। अब समझे, उस तकलीफ में राहत है। इसलिए गुनाह के करने में जो राहत मिल रही है वो राहत में तकलीफ है, और आमाल के करने में, हुक्म पर चलने में जो तकलीफ हो रही उस तकलीफ में राहत है। तो फरमाया, तो कहता है मुझे दोबारा मुलाजमत दे दो, अगर मोहब्बत किसी चीज से हो जाए तो उस रास्ते की सारी तकलीफ आसान मजेदार हो जाती, उसी में लुत्फ आने लगता है। जी इसी तरह गुनाहों को छोड़ने में तकलीफ जरूर है, गुनाहों के छोड़ने में तकलीफ जरूर है, शुरू में मशक्कत होगी, लेकिन जब एक मर्तबा डट गए, शरीयत के मुताबिक अमल शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद भी होगी, फिर इंशाअल्लाह ताला उस तकलीफ में मजा आने लगेगा। जिस तरीके से मुलाजिमत जाने वाले को तकलीफ आती है लेकिन उस तकलीफ में मजा है, ऐसे ही गुनाहों को छोड़ने वाला वो भी तो एक मुलाजिमत कर रहा है, अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा है, तो अब उसमें उस तकलीफ में उसको मजा आने लगेगा, बाद में अल्लाह ताला की इताअत में मजा आना लगेगा। अल्लाह अल्लाह हमें समझा दे वाकई, या ये अल्फाज तो कानों में जा रहे लेकिन इंशाल्लाह ये नूर दिलों में असर जरूर करेगा, इससे न घबराओ, असर जरूर करेगा, सिर्फ नीयत ये हो कि अल्लाह, और कहते भी रहे कि अल्लाह ये जो बातें सुन रहे उस पर अमल की तौफीक दे दे, तो अल्लाह कर देगा। हमारे हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतब बड़ी अजीब और गरीब बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया कि इंसान के इस नफ्ज को लज्जत और मजा चाहिए। देखो इंसान के इस नफ्स को क्या चाहिए? लज्जत और मजा चाहिए, उसको टेस्ट चाहिए, बस टेस्ट दो। उसकी नफ्स को लज्जत और मजा, उसको उसकी खुराक लज्जत और मजा है, लेकिन लज्जत और मजे की कोई खास शक्ल उसको मतलूब नहीं। देखो नफ्स कैसा है, उसको टेस्ट चाहिए, लज्जत चाहिए, लेकिन वो नहीं है कि मुझे तो यही लज्जत चाहिए, कोई भी लज्जत। देखो भाई, हराम खाना हो या हलाल खाना हो, ये जबान ये नहीं देखती है, जबान ये देखती है कि टेस्ट किस में है, कि नहीं? तो जबान को तो तुम अगर हलाल दोगे तो टेस्ट मिलेगा, फायदा होगा, हराम दोगे तो भी टेस्ट मिलेगा। ऐसे ही हमारा नफ्स जो है ना, तो नफ्स भी ऐसा ही है, उसको टेस्ट चाहिए, फुला किस्म का मजा चाहिए, ऐसा नहीं, फुला किस्म का नहीं चाहिए, बस उसको तो मजा चाहिए। अब तुमने उसको अगर खराब किस्म के मजे का आदि बना दिया, गुनाहों का आदि बना दिया, खराब किस्म की लज्जतों का आदि बना दिया, तो वो उसमें पड़ जाएगा। एक मरतबा उसको अल्लाह ताला की इताअत और इबादत की लज्जत से आशना कर दूंगे, तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की लज्जत उसको दे दिया, फिर ये नफ्स उसी में उसको मजा आने लगेगा। तो देखो उसको तो टेस्ट चाहिए, जबान को भी टेस्ट चाहिए, तो नफ्स क्या कहेगा? जबान से या तो गीबत फजूल बातें कराएगी उसमें भी मजा आएगा, और जबान से अगर अल्लाह की बड़ाई बुलाएंगे तो उसमें भी मजा आएगा। जबान तो कहती है कि मुझे तो चलाना है, अब तेरा काम है, तू मुझे जिक्र में चला, अल्लाह की बड़ाई में चला, या लोगों की गिबत में चला, मुझे तो चलना है, है कि नहीं? जबान को तो चलना है, तो ये इसलाह उसी का होगा, जबान को रोकना नहीं है। तो इसलाह जब हो जाएगी तो फिर इंसान अल्लाह की बड़ाई जबान से बोलेगा, तो जबान का हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहेगी, और अगर इसलाह न हुई तो जबान से हर वक्त गिबत रहेगा, गुनाह हो रहा है, अब उसी में उसको मजा आ रहा है। तो उसको एक आदमी को अल्लाह की बड़ाई बोलने में मजा आ रहा है, उसको गिबत में मजा नहीं आ रहा है, और गिबत वाले को गिबत करने में मजा आ रहा है तो बलाई बड़ाई बोलने में मजा नहीं आ रहा है, तो क्या वो आदि बन चुका है? तो इसी तरीके से नफ्स भी है, गुनाहों के अंदर जाने में उसको मजा है, तो उसको इताअत में लगा दो। तो डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अजीब और गरीब बात फरमाई, फिर इंसान के नफ्स को लज्जत चाहिए, बस उसको मोड़ना है, उसको इस लज्जत से हटाकर दूसरी लज्जत में डाल दो। इसलिए फरमाते हैं कि एक आदमी है किसी गुनाहों में लगा हुआ है, तो उसको ये मत कहो कि ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, वो छोड़ दे, बल्कि उसको उसके मुकाबले की लज्जत दे दो। भाई तुम ये कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो वो जब करना शुरू करेगा उसमें उसको मजा आएगा, तो दूसरा खुद ब खुद छूट जाएगा। ये है दावत का असल तरीका, उसको करने के काम बता दो। जैसे अभी हमने दर्स शुरू कर दिया, बराबर, अभी आपसे कहा कि भाई आप दर्स शुरू सुनना शुरू कर दो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप ये छोड़ो वो छोड़ो, मैंने कहा दर्स सुनना शुरू कर दो। अब जाहिर बात है ये दर्स सुनना शुरू करेंगे तो अब नफ्स को मजा आ गया, हाँ बोले तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या होगा, अब वो उधर से खुद ब खुद हट गया। कितनी अभी ये वक्त में आप गिब्बत से हट गए, इस वक्त में आप दूसरी बातों से हट गए, दूसरे गुनाहों से हट गए, अब ये वक्त आपके का, अभी ये बात सुनते सुनते नफ्स को मजा आया, अब वो सोचेगा चलो अब मैं इस पर अमल करूं, अब करते करते उसकी जिंदगी बदल गई। तो ये नहीं कहा गया कि आप ये छोड़ो ये छोड़ो, बल्कि कहा गया ये करो ये करो ये करो। तो दावत का असल तरीका है कि उसके मुकाबिल की चीज उसको दे दो। इसीलिए दावत और तबलीग में जाकर क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रास्ते में निकलो, और कौन सा वक्त, फुर्सत का वक्त निकलो, आपकी जब छुट्टी हो तो अल्लाह के रास्ते में चले जाओ। तो उसके उसके मुकाबले का दे, अब नफ्स को जब उसमें मजा आएगा बोले ये तो बहुत अच्छी चीज, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में लग जाएगा और गुनाहों से बच जाएगा। उसको आमाल बताते भाई नमाज पढ़ो, तो जब नमाज पढ़ना शुरू करेगा तो जाहिर बात है अब उसमें जरा लज्जत आएगी तो गुनाहों को खुद ब खुद छोड़ देगा। तो ये है, तो क्या करना है, अब नफ्स को लज्जत का आदी है तो उसको इताअत की लज्जत में डाल दोगे तो गुनाहों की लज्जत से छूट जाएगा। लेकिन इताअत में डालोगे नहीं और गुनाहों से छुड़ाओगे तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसलिए दावत के तरीकों में बहुत से लोग बाज मरतबा ऐसी गलती करते हैं, लोगों से कहते हैं भाई ये मत करो, ये हराम है और ये गुनाह है और ऐसा है, उम्मत कहां जा रही है। ये दावत का तरीका नहीं, दावत का तरीका इस बात में है का उम्मत को ये करना चाहिए, हमारे नबी ने ये हुक्म दिया है, ये हुक्म दिया है, अब वो उस पर लगा दो, वो लगेंगे खुद ब खुद गुनाह छूट जाए। इसलिए कभी भी किसी को दावत देना है, कोई अगर ऐसा लिबास पहनकर अगर हमारी तालीम में जाए तो उसको मत टोको कि तुम कितना हराम और ये कैसा है और ये नहीं, उसको हमारे नबी का लिबास बता दो। किसी का टखनों से नीचे पाजामा देखा है तो उसको मत बताओ कि तुमने टखनों से नीचे ये हराम है, उसको कहो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत लिबास था, टखनों से ऊपर था। तो एक तरीका तो ये है कि आपने सुन्नत बता दी तो वो भी एक दावत है, क्या ना मतलब तुम्हारा लिबास टखनों से ऊपर कर दो। और एक है कि टखनों से नीचा पहनना हराम है और ये है और उसे जहन्नम में जलेगा, तो फिर क्या हुआ, तो ये दावत तुमने जो दी उसको उसके सामने की लज्जत नहीं बताई। हाँ, तो उसकी वजह से ये काम दलाइल से उलमा का है, हमारा काम फजाइल से है। क्या फजाइल, यानी उसके मुकाबले की सुन्नत बता दिया कि ये करना है। अब ये बोले ये, अब जब जाहिर बोले सुन्नत ये है, बोले ये अब ये हम नहीं जानते, हम सुन्नत पर अमल कर लो, तो ऑटोमेटिक उसका टखनों से ऊपर पाजामा हो गया। अल्लाह अकबर कबीर। तो समझ गए बात, ये बात को समझाना चाहता था क्योंकि बात ऐसी थोड़ी हार्ड थी, तो जरा खोल खोल के समझाए ताकि बात समझ में आ जाए। तो दावत देने का तरीका भी बता दिया, दावत दो, इंफिरादी हो या इज्तिमाई हो, लेकिन सामने वाले को हराम है, जहन्नम में जाएगा अल्लाह के वास्ते, ऐसे अल्फाज में बोलो, उसको अल्लाह के नबी की सीरत बता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, सहाबा ऐसे करते थे, अल्लाह का हुक्म ऐसा है, बस ये प्यार मोहब्बत की दावत उसको बहुत अच्छी लगेगी, बोले देखो तो सही उसने कितनी अच्छी बात बताई। हालांकि इस बात के पीछे उसको दावत मिल गई और उसको भी मजा आया, उसकी मोहब्बत बढ़ी, बोले चलो उसके पास जाएंगे वो बहुत, और बोले फुला के पास जाते तो हर वक्त हमको टोकता रहता है, बोले तुम ये गलत करते हो वो गलत करते हो, बोले इसके पास जाते हैं तो कभी भी हमें टोका नहीं है लेकिन बेहतरीन बात बता रहा है, तो दावत वो भी दे रहा है, दावत ये भी दे रहा है, लेकिन ये दावत ज्यादा नफा देती है, वो दावत हमें नफा नहीं देती है, उसमें उलझ जाते, इंसान डर जाता है। गालिब का एक शेर मशहूर है, खुदा जाने लोग उसका क्या मतलब लेते हैं, लेकिन हमारे हजरत उसका बड़ा अच्छा मतलब निकाला है। फरमाया, मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, मैं से गरज नशात है किस रू सियाह को, आग एक गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। शराब से मुझे मुझको कोई ताल्लुक नहीं, फरमाया शराब से मुझको कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो दिन रात लज्जत की बेखुदी चाहिए। यानी ये भी एक नशा है कि मुझे एक अल्लाह की मोहब्बत का एक शराब है। एक शराब तो वो है जो चीजों से बनी है, और एक शराब वो है जो अल्लाह की मोहब्बत की है। फरमाया अल्लाह की मोहब्बत की जब शराब इंसान पीता है तो फिर उसको एक लज्जत मिलती है, बस उसी में वो गुम होता है। जैसे दुनिया की शराब पीता है इंसान तो उसको भी एक नशा सा छा जाता है, उसमें गुम हो जाता है, ऐसे ही अल्लाह की मोहब्बत की जो शराब पीता है तो फिर उसको भी वो अल्लाह में गुम हो जाता है। वो एक अजीब, फिर उसको तकलीफ तकलीफ नहीं लगती, लोगों की जो जिल्लत और कड़वी कसेली बातें उसके लिए एक मजा आ जाता है। सहाबा ने मोहब्बत की शराब पी ली थी तो सहाबा कभी भी रास्ते में अटके नहीं, चलते रहे। हालात आते गए, मुकाबला करते गए और मंजिल पर पहुंच गए। हमें भी मंजिल पर जाना है, रास्ते में अटकना नहीं है। तो फरमाया मुझे तो दिन रात लज्जत की खुदी चाहिए, तुमने मुझे शराब का आदि बना दिया तो मुझे शराब में बेखुदी हासिल हो गई, शराब में लज्जत आने लगी। अगर तुम मुझे अल्लाह ताला की याद और उसकी जिक्र उसकी इताअत का आदि बना देते तो ये बेखुदी मुझे अल्लाह के जिक्र में हासिल हो जाती। दुनिया की शराब पिलाई तो उसके अंदर उसको आदत हो गई कि अब नशा चाहिए, जरा सा उतरता है तो बोले फिर से पिलाओ, तो चाहिए उसका। अब उसको अल्लाह की मोहब्बत का जब शराब पिलाएंगे और उसकी इताअत का शराब पिएगा तो उसका आदि बन जाएगा, फिर हर वक्त वो इताअत करेगा। बोले यार मेरे से कोई हुक्म टूट रहा है, अब मजा नहीं, चलो हुक्म पूरा करके फिर अल्लाह की मोहब्बत में बेखुदी हो जाएगा, मुझे अल्लाह के जिक्र में हासिल हो जाती, मैं तो उसी में खुश हो जाता। लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे इन चीजों के बजाय शराब का आदि बना दिया। जी शराब का आदि बना दिया, थोड़ा सा है, नफ्स को कुचलने में मजा आएगा। इसी तरह ये मुजाहदा शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता है कि बड़ा कठिन सबक दिया जा रहा है, ये सबक बहुत आसान है, वाकईतन बहुत आसान है कि अपने नफ्स की मुखालिफत करो, लेकिन मुश्किल क्यों लग रहा है कि माहौल नहीं बस। और मुजाहदा तो उसी का नाम है कि माहौल के खिलाफ चलने का नाम मुजाहदा है। और मुजाहदा पर ईमान बनेगा। फरमाया मुजाहदा क्या है, आज हम दावत देते हैं, दावत क्या है, माहौल के खिलाफ। फरमाया सारी दुनिया का माहौल यह है कि चीजों से होता है कि नहीं, बाय एजुकेशन से होगा और माल से होगा, दुकानों से होगा, इससे होगा उससे होगा, और हम दावत देते हैं भाई किसी से कुछ नहीं होगा, अल्लाह से होगा। अल्लाह काम बनाएंगे तो दुकान से मिलेगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, अल्लाह चाहेंगे तो चीजों से कामयाबी मिलेगी, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो कुछ, तो हम कह रहे हैं अल्लाह से होगा। इसलिए लोग कहते हैं पागल है, ये सारे माहौल के खिलाफ दावत दे रहा है, तो इसके लिए अब मुजाहदा है, तो माहौल के खिलाफ है ना, इसलिए मुजाहदा है, वरना ये चीज मुजाहदे की नहीं है, बहुत आसान काम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में माहौल क्या था, 360 से काम बन रहे थे, इतने बूत थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर क्या फरमाया, पूरे माहौल के खिलाफ दावत दी, फरमाया ये सब छोड़ो, 360 से कुछ नहीं होता, एक अल्लाह से होता है। तो लोग क्या कहने लगे कि ये पागल हो गया, नऊज़ु बिल्लाह। वो पागल इसीलिए तो कहा था, बोले अजीब है, हमारे काम तो 360 खुदा है और काम नहीं बन रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि सबको छोड़ो एक से काम बनेगा, ये तो बड़ी अजीब बात है, इन हाजा लशे उन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है, बोले कैसे हो सकता है। तो इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रही थी बात, इसलिए आज भी हम ऐसे ही लोग हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, ये कहते हैं मुजाहदा मुजाहदा, बोले क्या मौलाना कैसी बातें करते हो, ये बात समझ में नहीं आएगी, माहौल के खिलाफ कदम उठाना, आप जरा उठाने जाओगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। तो इसीलिए तो कहने दो, थोड़े दिन हिम्मत कर लो। ईमान ताजा हो रहा है तो फरमाया इस तरह ये मुजाहदा शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता है, बड़ा कठिन सबक दिया जा रहा है कि अपने नफ्स की मुखालिफत करो, अपने नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ वर्जी करो। नफ्स तो चाह रहा है कि गीबत करो, मजलिस में गीबत करने का मौजू छिड़ गया, अब जी चाह रहा है कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। अब उस वक्त उसको लगाम देना कि नहीं नहीं ये काम मत करो, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। लेकिन याद रखिए, दूर दूर से ये मुश्किल नजर आता है, जब आदमी ने पुख्ता इरादा कर लिया कि ये काम नहीं करूंगा तो उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से, फजलो करम से मदद भी होगी। और फिर तुमने इस आरजू और ख्वाहिश को जो कुचला है, इस कुचलने में जो मजा आएगा इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह, उसकी हलावत और उसकी मिठास इस गिबत की लज्जत से कहीं ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बस बस इसको पूरा करने जाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, बस इंशाल्लाह आगे की बात को कल पूरा करेंगे। मुराकबा कर लो, आंखों को बंद कर ले, गर्दन को झुका ले, ये तसव्वुर करे अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह।